ओम शांति। हमारे बीच में अभी मोहिनी दीदी जी पधारे हैं, हम आपका करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप ज्ञान में 1967 से हैं, आप जम्मू से हैं, सेवा में समर्पित हुए, आपको 1970 से आप समर्पित हुए। अमृतसर, चंडीगढ़ और पंजाब के कई स्थानों पर आपने सेवाएं दी हैं। वर्तमान में राजस्थान में श्री गंगानगर में अपनी निरंतर 33 वर्षों से अथक सेवाएं दे रहे हैं। इनके कार्यकाल में ही श्री गंगानगर के अन्य स्थानों की आपने सेवा की। महिला विंग की राजस्थान जोन की आप कोऑर्डिनेटर रहे हैं। अभी हम आपसे ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी के बारे में सुनेंगे। आदरणीय मोहिनी दीदी जी।
ओम शांति। अभी हम छोटे बच्चे के द्वारा, बाबा के द्वारा उच्चारण किए हुए महावाक्यों की वाह वाह सुन रहे थे। उस छोटे बच्चे ने भी बाबा के महावाक्यों को सुनाकर हमारे अंदर पुनः एक उमंग, उत्साह और खुशी भर दी। और सचमुच में हम सब ब्राह्मण बाबा के बच्चे, जिनके इस अलौकिक जन्म और जीवन को नाम ही मिला है ब्राह्मण, और आज हम आपस में रूरिहान कर रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन की सच्ची रूहानी, चाहे वो पर्सनैलिटी कहें चाहे रॉयल्टी कहें, एक ही बात है, लेकिन ब्राह्मण शब्द पहले आ रहा है, ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी। तो ब्राह्मण शब्द कहां से आया, हम सब जानते हैं। लौकिक ब्राह्मणों से भी आप पूछेंगे, ऐसे साधारण ब्राह्मणों को तो शायद ज्ञान ही नहीं होगा, लेकिन जो कुछ समझ रखते हैं, भक्ति के अंदर ज्ञान रखते हैं, या भक्ति के जो भी कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण है, उनसे पूछेंगे आप कि आपके ब्राह्मणों के वंशावली की उत्पत्ति कहां से हुई, तो सुनने को मिलेगा कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा मुख से हुई। तो वो ब्राह्मण जिनका नाम अभी तक चला रहा है, लेकिन उनके नाम के साथ साथ उनके कर्मों की विशेषता भी आज तक चली आ रही है। आप सबने शायद लौकिक में देखा होगा, मैंने भी देखा हुआ है छोटेपन में, कि मास में एक बार ब्राह्मण को बुला के घर में भोजन कराया जाता था लौकिक में। तो जब ब्राह्मण घर पे आता था तो बड़े मान सम्मान से उनको अंदर लाया जाता था और विशेष आसन उनके लिए अलग से लगाया जाता था। और जब वो आसन पर बैठता था तो मैंने देखा हुआ है कि पानी हाथ में लेकर के उनके आसपास ऐसे घुमाया जाता था और उनके चरण धोए जाते थे और बड़ी श्रद्धा से उनके लिए भोजन तैयार किया जाता था। और भोजन तैयार करने वाला उस दिन जब तक वो भोजन बना के तैयार करे, ब्राह्मण को भोजन नहीं खिलाए, तो उपवास में रहता था। और भोजन खिलाने के समय ब्राह्मण भी बड़ी अपनी उस स्वमान में, उसी स्वरूप में आकर बैठता था और मौन में भोजन करता था, इशारे से जो चाहिए था मांगता था या उसको दिया जाता था, और बाद में विशेष नमस्कार करते हुए उनको दक्षिणा आदि दी जाती थी। और आज भी आप सब देखते हैं कि कोई भी शुभ कार्य जो किए या करवाए जाते हैं, वो हमेशा ब्राह्मण को ही बुला करके किए जाते हैं। हर शुभ कार्य के लिए, हर विशेष कोई खुशी का कार्यक्रम है घर के अंदर, उसको भी विशेष रूप से करने के लिए ब्राह्मण को ही बुलाया जाता है। तो सबसे पहले हम अपने ब्राह्मण शब्द को ही लें, तो ब्राह्मण शब्द ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई। शिव बाबा जो ब्रह्मलोकवासी, जब ब्रह्म मुहूर्त की वेला में सृष्टि पर आए और ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और हम सब बच्चों को ये ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण जन्म मिला, तो ये जो हमारा ब्राह्मण जन्म है, अब लौकिक ब्राह्मण की तुलना में हम अपने अलौकिक ब्राह्मण जन्म को देखें, अपने ब्राह्मण जीवन को देखें, तो उससे कितने गुना, पदम गुना जैसे हम श्रेष्ठ और महान ब्राह्मण बने हैं। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसी चर्चा आती है, आपस में बातचीत होती है कि जो बाबा हम बच्चों से ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी देखना व दिखाना चाहता है कि मेरे बच्चे अपने स्वरूप से मुझे प्रत्यक्ष करें, बच्चों द्वारा बाप दिखाई दे, बच्चों का चेहरा और चलन बाप के ज्ञान को, बाप के गुणों को, बाप की शक्तियों को प्रत्यक्ष करे, अभी तक ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। कोई विरला, जैसे कहते हैं कोटों में कोई विरला ब्राह्मण ऐसी सेवा कर रहा है, लेकिन सब ब्राह्मण बाबा के बच्चे ऐसा स्वरूप बना लें, तो उसके पीछे क्या कारण है? क्यों अभी तक हम ब्राह्मणों के जीवन से वो रॉयल्टी जो रियलिटी से पैदा हुई है, रॉयल्टी शब्द आप जानते हैं सब यहाँ जो बैठे हैं कि रॉयल्टी शब्द कहाँ से निकला है? ये रॉयल शब्द, रॉयल्टी शब्द हमेरा हमेशा बहुत ऊंचे श्रेष्ठ घरानों से जोड़ा गया है। लौकिक दुनिया में कोई बहुत धनवान, संपत्तिवान और बहुत अच्छी पोस्ट और पोजिशन वाला होता है तो उनको दुनिया में लौकिक में कहते हैं ये बहुत रॉयल है। लेकिन यहाँ हम जो ब्राह्मण बाबा के बच्चे हैं, हमारी रॉयल्टी किससे जुड़ी हुई है? हमारी रॉयल्टी रियलिटी से जुड़ी हुई है, सत्यता से जुड़ी हुई है। ब्राह्मण जन्म सत्यता और पवित्रता, प्योरिटी और रॉयल्टी है और उससे पैदा होती, जब प्योरिटी और रियलिटी आती है जीवन के अंदर तब रॉयल्टी आती है। तो अब हमें देखना है कि लौकिक ब्राह्मण थोड़ी सी भक्ति की, संस्कृत की विद्या जान जाते, थोड़े पूजा पाठ के विधि विधान जान जाते, थोड़े से यज्ञ तप करने के मंत्रों को उच्चारण करना जान जाते, तो लोग उनका कितना सम्मान करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं, कितना मान करते हैं। और हमारा ये जो अलौकिक जन्म और जीवन जो स्वयं भगवान ने हमें दिया ब्रह्मा मुख द्वारा, उसके हम बच्चे क्यों नहीं अभी तक हमारे आपके जीवन से दूसरों को वो रॉयल्टी नहीं दिखाई देती, अर्थात उस रॉयल्टी का प्रभाव हमारे जीवन अब का अभी तक दूसरों पर क्यों नहीं पड़ रहा है? तो उसका मुख्य कारण यही है कि पहले हम ब्राह्मण बाबा के बच्चों को ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम बाबा के बच्चों के जीवन में वो रियलिटी और वो रॉयल्टी कैसे आएगी। वो तभी आएगी जब हमारे जीवन के अंदर बाबा के बताए हुए संयम और नियम, जैसे इसलिए मैं लौकिक ब्राह्मण का एग्जाम्पल साथ में इसीलिए दे रही हूँ आपको कि हमारी कई साधारण माताएं बहने हैं जो कि इन बातों को इतना अच्छी तरह से नहीं समझ पाती है, तो उनको भी ये पता चलना चाहिए कि बाबा जो हम बच्चों को रॉयल्टी कहता है, रियलिटी कहता है, प्योरिटी कहता है, वो वास्तविकता में क्या है। कि जैसे एक लौकिक ब्राह्मण हमने देखा हुआ है कि अगर वो बाहर कहीं अशुद्ध चीज से टच करके आ जाता, ये बहुत पहले 20-25-30 साल पहले की बात कर रहे हैं, कहीं भी कोई अशुद्धि को टच होके आ जाता तो वो अंदर अपने घर में प्रवेश नहीं करता था, माना बाहरी शुद्धि, दिखावे की शुद्धि, अंतरात्मा की शुद्धि के बारे में उनका इतना ध्यान नहीं होता है, लेकिन बाहरी शुद्धि में आप देखिए वो कितने पक्के होते हैं, सच्चे होते हैं इस बात में। बाहर ही जल मंगा करके घर में प्रवेश नहीं करेंगे, स्नान करेंगे, फिर अग्नि के ऊपर पैर रख करके कोयला मंगाएंगे जलता हुआ और उस पर पांव रख करके फिर अंदर, उस तब अपने आप को शुद्ध मानते हैं। अग्नि, जल और अग्नि दोनों का प्रयोग किया, तो बाबा ने हम बच्चों को जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन दिया है उसमें जो सबसे बड़ी रॉयल्टी सिखाई है वो है प्योरिटी, पवित्रता। अब हम सभी देखेंगे अपने आप को कि जो बाबा हम बच्चों से चाहता है वो प्रत्यक्ष गुण, प्रत्यक्ष रॉयल्टी हमारी तभी दिखाई देगी जब हम बाबा के बच्चों के अंदर संपूर्ण पवित्रता होगी और संपूर्ण सत्यता होगी। और उसमें भी विशेष जो बाबा की हम बच्चों को अभी वर्तमान में शिक्षा मिल रही है, आप सभी नोट कर रहे होंगे, देखते होंगे कि अभी बाप दादा जब आते हैं तो हमें कोई प्रकार की शिक्षा नहीं देते हैं, सावधानी नहीं देते हैं, हम बच्चों को सच्चा प्यार, दिल का प्यार, वो सच्चा रूहानी प्यार जिससे अंदर आत्माएं महसूस करती हैं, जैसे अभी जो नए नए भाई बहन आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि इस समय जो आत्माएं निकल रही हैं, उनके न तन में शक्ति है ना मन में ताकत है, आत्मा में भी शक्ति नहीं है और शरीर में भी शक्ति नहीं है। अधिकतर आप देखेंगे सब भाई बहन जो भी नए नए निकल रहे हैं वो हमारे आपसे जो पुराने हैं उनसे ये चाहते हैं कि आप हमें अपने ज्ञान से ज्ञान दो, गुणों से गुण दो, शक्तियों से शक्ति दो। आपने जो इतने समय से तपस्या की है, आपने जो इतने समय से सेवा करके और त्याग तप करके जो आपने जमा किया है, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है तो वो हमारे से चाहते, तो हम वो बाबा के बच्चे हैं कि अभी हमें अपनी प्योरिटी से, अपनी रियलिटी से उन आत्माओं को देना है। तो प्योरिटी वाला जो ब्राह्मण है जिसमें संपूर्ण प्योरिटी है, संपूर्ण पवित्रता है, तो सबसे पहले पवित्रता मनसा की आती है। देखिए बाहरी पवित्रता बाहर के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो प्योरिटी है उस प्योरिटी में जो रियलिटी है वो सत्यता से जुड़ी हुई है कि हमारी पवित्रता, बाबा के शब्द हैं कि आप बच्चों के स्वप्न में भी कोई अशुद्ध विचार, अशुद्ध दृश्य नहीं आना चाहिए, स्वप्न में भी। सच्चे ब्राह्मण के की विशेषता, सबसे संपूर्ण ब्राह्मण की विशेषता जो भविष्य में संपूर्ण देवात्मा बनने वाली है, कि उनको स्वप्न में भी कोई संकल्प विचार और कोई दृश्य अशुद्ध नहीं आना चाहिए, अशुभ नहीं आना चाहिए। तो भी हम चेक करेंगे, देखेंगे अपने आप को कि अभी तक हम बाबा के बच्चे संकल्प को तो छोड़ें, किसी दृश्य को तो छोड़ें जो स्वप्न में आ जाए, लेकिन अभी तक हम अपने बोल और कर्म पर भी पूरा अटेंशन नहीं दे पा रहे। अब हम बच्चों की बाबा की शिक्षाओं के हिसाब से, समय के हिसाब से और अपनी अवस्था और स्थिति के हिसाब से जो चल रहा है अभी वर्तमान समय, ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिसका मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको बता रही हूँ, ऐसा बनना पड़ेगा, तब हमारे आपके अंदर, सभी के अंदर वो सच्ची रॉयल्टी आ सकती है। हमारी नजर किसी और तरफ नहीं जाए। कैसे? एक छोटा सा दृष्टांत है, पुराने समय की बात है, एक राजा की सवारी निकल रही है। आपको मालूम है जब राजा निकलता है तो उसकी सवारी जब निकलती है उससे पहले उसके मंत्री संतरी आगे चलते हैं और आवाज देते हुए चलते हैं कि राजाओं के राजा महाराजा अधिराज पधार रहे हैं, मार्ग जो है वो एकदम साफ और स्पष्ट, कोई सामने नहीं होना चाहिए, लोग अपने आप किनारे में खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। ऐसे ही सवारी निकलती हुई आगे बढ़ती जा रही है तो कुछ दूरी पर एक छोटा सा बालक मिट्टी से खेल रहा है। तो जैसे जैसे राजा की सवारी नजदीक जाती गई तो राजे की नजर जो है उस बच्चे पर पड़ी। बच्चा बड़ा भोला भाला सुंदर, छोटा सा बच्चा, ऐसे 6-7 साल की उम्र का, तो राजा उसको ध्यान से देख रहा है, लेकिन बच्चे ने इतनी आवाज हो रही है, राजा की सवारी में हाथी घोड़े चल रहे हैं, आवाजें हो रही हैं, उधर वो जोर जोर से मंत्री संतरी बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे ने जरा भी नजर उठा करके नहीं देखा। तो तो राजा को बड़ा देख करके ऐसे विचित्र लगा, तो राजा अपने रथ से उतर गया, उतर करके बच्चे के पास जाके खड़ा हो गया। तो बच्चा अपनी उसी मस्ती में मिट्टी के साथ खेल रहा है, छोटे छोटे मिट्टी के घर बना रहा है, ऐसे खेल रहा है मिट्टी से। उसने तो भी राजा को नजर उठा करके नहीं देखा, जब उसके पास जाकर खड़ा हो गया तो राजा ने आवाज लगाई, बच्चे तुम देख रहे हो तुम्हारे पास कौन खड़ा है। जब उसने आवाज लगा के ऐसे बोला तो राजा ने नजर उठा, उस बच्चे ने राजा की तरफ नजर उठा के देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं, फिर मिट्टी से खेलने लग गया। तो राजा ने कहा, बच्चे तुम इतने अच्छे बच्चे हो, इतने सुंदर बच्चे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मिट्टी से क्यों खेल रहे हो, चलो मैं तुमको अपने राज दरबार में ले चलता हूँ, चलोगे। तो जैसे ही राजा ने ऐसा बोला तो बच्चे ने फिर नजर उठा के राजा की तरफ देखा, और देख करके जैसे थोड़ी देर कोई मौन में रहता है, चुप रहता है, चुप रहा और फिर कहा कि राजा अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो मैं जरूर चलूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे मेरी दो शर्त, दो बातें माननी होंगी। तो कहा, बच्चे बोलो तुम्हारी क्या दो शर्त है, मैं अवश्य पूरी करूंगा। कहा, कर लोगे? बच्चा कहता है, कर लोगे? कहा कि हाँ जरूर करूंगा। तो कहा, पहली शर्त मेरी ये है कि तुम मुझे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ोगे, यहां भी बैठोगे, यहां भी जाओगे, जो भी करोगे हर समय मुझे अपने साथ रखोगे, मंजूर है? तो राजा सोच में पड़ गया और कहने लगा कि बच्चे शर्त तो तुम्हारी थोड़ी कठिन है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा, तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, फिर दूसरी शर्त सुनाओ। तो जब दूसरी सुनाई तो कहा बच्चे ने कि जब मैं सोऊंगा तो तुम्हें जागना होगा, पहले हर समय तुम्हें मुझे अपने साथ रखना होगा, और दूसरा मैं जब सोऊंगा तुम्हें जागना होगा। जब ये शर्त कही तो राजा कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर कहने लगा कि बच्चे ये शर्त तो थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं राजा हूँ, मुझे सारा दिन अपनी राज्य कारोबार करनी होती है, कहाँ कहाँ जाना होता है, और रात दिन भर में मैं थक जाता हूँ, तो मेरे प्रहारी जागते हैं और मैं सोता हूँ, तो रात को तो मुझे सोना ही पड़ेगा, रात भर तो नहीं जाग सकता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ सुला लूंगा, अपने पास रखूंगा। राजा ने बहुत ऐसे प्रलोभन दिए उस बच्चे को, बहुत कुछ कहा, लेकिन उसने कहा नहीं, ये दोनों शर्तें तुम पूरी कंप्लीट मानो तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें जागना भी होगा और हर घड़ी हर पल तुम्हें मुझे अपने साथ रखना होगा। ऐसा कह के बच्चा फिर अपना मिट्टी से खेलने लग गया, और राजा उस बच्चे की बात सुनने के बाद क्या हो जाता है, जैसे कोई एकदम हैरान हो जाता है, और हैरान होकर के शांत हो जाता है, कुछ कह नहीं सकता है और सोच में पड़ जाता है, और उस बच्चे को देखते देखते वापस चला जाता है और वापस अपने रथ पर सवार होके अपनी यात्रा यहाँ कर रहा है वहां चला जाता है, और वो बच्चा एक बहुत बड़ा महान संत हुआ, बहुत बड़ा एक महान श्रेष्ठ पुरुष हुआ, जिसने अनेकों को अपने जीवन के दर्शन द्वारा ऐसा दर्शन कराया जिस दर्शन पर चलकर अनेक लोगों के जीवन श्रेष्ठ बने, महान बने। लेकिन उस दिन उस राजा को भी उस बच्चे ने आत्मज्ञान दिया और ये शब्द कहे राजा को कि देख राजा, तू जा रहा है, सुन के जा। वापिस लौटने लगा राजा तो उसने कहा, राजा सुनोगे, मैं क्यों नहीं तुम्हारे साथ जा रहा हूं, क्योंकि मैंने जिसको अपना बनाया है वो हर घड़ी हर पल मुझे हर समय अपने साथ रखता है, और जब मैं सोता हूं तो वो जागता है। तो वो कौन है, वो कौन है जो हम सोते हैं तो जागता है? तो वो है हमारा प्यारा परम पिता परमात्मा शिव, जिसके लिए दुनिया में कहा गया है, भक्ति मार्ग में कहा गया है भगवान को जागृति ज्योति, अखंड ज्योति, अविनाशी ज्योति। तो वो जागृति ज्योति परम पिता परमात्मा हमारे सदा रक्षक हैं और हमारे सदा साथी हैं। तो उस बच्चे ने भी उस राजा को ये ज्ञान दिया कि आज से तू भी उसे अपना बना ले। तो राजा को भी बोध हुआ और उस दिन से राजा ने अपने राजपाट को इतना हल्का कर दिया और अपने बच्चों को संभालने के लिए दे दिया और खुद उस बच्चे को ही अपना गुरु मान करके और चला गया वहां से। लेकिन उस बच्चे के स्वरूप को उसने अपने हृदय में समा लिया और उसको अपना गुरु मान करके और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। तो हम भी बाबा के वो बच्चे हैं। तो अब हम उसी बात पर आ रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन की रॉयलिटी, रियलिटी और प्योरिटी। लेकिन रॉयलिटी जो है वो यही है कि हमारी किसी की तरफ नजर नहीं जाए। दिखाई बहुत कुछ देता है, सुनाई भी बहुत कुछ देता है, वातावरण भी कई प्रकार के हमारे सामने बनते हैं, व्यक्ति भी कई प्रकार के हमारे सामने आगे पीछे आते और जाते हैं, कई दृश्य घटनाएं बातें समस्याएं परिस्थितियां आती हैं। लेकिन अब हम बाबा के बच्चों को उस बच्चे के समान, मैं आत्मा और दूसरा मेरा पिता परमात्मा, तीसरा ना कोई। जब ये स्मृति और अंदर की स्थिति, अंदर की वृत्ति और अंदर का भाव बन जाएगा तो उस दिन से हम भी उस बच्चे के समान सदा के लिए उस जागती ज्योति की नजरों में रहेंगे और सदा वो हमें अपने साथ रखेगा। बाबा ने क्या कहा, मैं अपने बच्चों को दिल में रखता हूँ, हृदय में रखता हूँ। हम सबका एक सोमान है दिल तखत नशीन। तो तखत पर कौन बैठते हैं, ताज के अधिकारी कौन बनते हैं, तिलक के अधिकारी कौन बनते हैं, जिनके अंदर वो राजाई के, रॉयलिटी के श्रेष्ठ संस्कार होते हैं। तो बाप दादा हम बच्चों को इस समय वर्तमान में संगम युग पर जो श्रेष्ठ दिल तखत नशीन बनाते हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ दिल तखत नशीन बच्चे कभी भी इस देह अभिमान की मिट्टी में पैर नहीं रखेंगे। तखत पर बैठना अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहना, ऊंचे आसन पर रहना। वो ब्राह्मण तो देखिए एक स्थूल आसन पर बैठते और स्थूल तिलक लगाते और स्थूल पवित्रता है उनकी, तो भी उनका नाम से भी काम चल रहा है। मैंने ये भी एक प्रैक्टिकल देखा हुआ है एक बार कि ब्राह्मण जाति का ही व्यक्ति हमारे लौकिक घर में आता है, लेकिन वो प्रवृत्ति से ब्राह्मण नहीं रहा हुआ था, वृत्ति से ब्राह्मण नहीं था, लेकिन जन्म का ब्राह्मण जरूर था, बहुत गरीब साधारण सा था। तो जब उठ के जाने लगता है तो मेरी लौकिक माँ ने बोला कि देखो ब्राह्मण है घर में आया, इसको खाली नहीं भेजो। तो हमारे फादर को कहा कि इसको कुछ दे दो, क्योंकि उनकी खुद की हिम्मत नहीं पड़ी देने की, ये कुछ बोलेंगे कहेंगे फादर के कारण। तो उनको चला के कहा कि इसको खाली हाथ नहीं भेजो, इसको कुछ दे करके भेजो। तो ब्राह्मण नाम से भी अभी तक क्या हो रहा है, उन ब्राह्मणों का काम चल रहा है। लेकिन वो ब्राह्मण कौन से जिनके नाम से इन ब्राह्मणों का काम हो रहा है, वास्तव में वो सच्चे ब्राह्मण हम हैं जो सदा सबको देने वाले हैं। तो ब्राह्मण जीवन की वृत्ति से भी देने की भावना, दृष्टि से भी देने की भावना, मुख से भी देने की भावना, कर्म से भी देने की भावना, व्यवहार से भी देने की भावना। क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्मा के बच्चे, सर्वंश त्यागी के बच्चे हैं। ब्रह्मा बाप ने कुछ अंश भी अपने पास नहीं रखा, सर्वंश त्यागी बना। उस सर्वंश त्यागी बाप के हम बच्चे, और शिव बाबा तो है ही दाता वरदाता, उसके बच्चे, रूहानी नाते से उसके बच्चे हैं और अलौकिक नाते से ब्रह्मा बाप के बच्चे, जिसने हमारे सामने प्रैक्टिकल अपना जीवन संपूर्ण दाता के रूप में जिया। तो ब्राह्मण जीवन की पहले वृत्ति से रॉयल्टी चाहिए, क्योंकि वृत्ति से ही स्मृति बनती है। जो वृत्ति में बार बार विचार आते हैं, भाव आते हैं, उससे स्मृति बनती है। तो जितनी हमारी वृत्ति के अंदर प्योरिटी रहेगी और रियलिटी रहेगी, उतनी हमारी आत्मा के अंदर सब गुणों की रॉयल्टी आती जाएगी, क्योंकि पवित्रता सब गुणों को आकर्षित करती है। पवित्रता एक बहुत बड़ा चुंबक है जो सब गुणों को खींच करके हमारे अंदर भरता है। लेकिन अभी तक हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे प्योरिटी में भी कहां कहां कमजोर पड़ जाते हैं और रियलिटी में भी कहां कहां कमजोर हो जाते हैं। जिस दिन हम बाबा के बच्चों ने ये दोनों ज्ञान के शस्त्र रूपी शक्तियां धारण कर ली, प्योरिटी और रियलिटी, तो रॉयलिटी जीवन में नहीं आई, ये हो ही नहीं सकता है। और आप देखेंगे रॉयलिटी क्या होती है, व्यवहार। किसी के व्यवहार को देख करके आपने खुद ने देखा होगा, कोई चाहे परिवार से साधारण होता है, कोई बहुत पोस्ट पोजीशन वाला नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, कोई बहुत धनवान नहीं, लेकिन उसका उठना बैठना, बोलना, बातचीत करना, संबंध के अंदर संबंध निभाने में वो इतना अच्छी तरह से चलता है कि कहने में आता है कि वैसे चाहे इसको भगवान की तरफ से इतना कुछ नहीं मिला, लेकिन इसकी जो आदतें हैं, इसके जो संस्कार हैं, ये बड़े रॉयल हैं, ये कहने में आता है। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है लौकिक में भी, लेकिन हम जो बाबा के अलौकिक ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली, डायरेक्ट भगवान की संतान, तो हम ब्राह्मणों के जीवन के अंदर ये रॉयलिटी प्रैक्टिकल हर एक के द्वारा अनुभव होनी चाहिए। अभी भी बनारसी भाई आपको क्लास करा रहे थे, क्या बोल रहे थे कि अभी ज्ञान सुना करके लोगों को प्रभावित करने का समय गया, अभी तो घर बैठे सुनने को मिल रहा है, हमको आपको जैसे सुनाने की इतनी आवश्यकता ही नहीं रही है। लेकिन अभी लोगों को अगर हमें भगवान से जोड़ना है, भगवान का बनाना है, भगवान के घर तक पहुंचाने के लिए और उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का विरासत देनी है, तो हमको आपको सबको अपने चेहरे और चलन को रियलिटी और प्योरिटी वाला बनाना है। क्योंकि आप देखिए अभी लौकिक में भी सभी हमारे व्यवहार को देखते हैं, ब्राह्मण जीवन में भी हर कोई हमारे व्यवहार को देखता है। ब्राह्मण ही ब्राह्मण आपस में क्या देखते हैं, अभी आप देखिए हम यहाँ बाबा के घर में ही आते हैं, हमें रहने के लिए स्थान मिलता है, बना बनाया भोजन मिलता है, और भी सारी व्यवस्थाएं जो भी हमें आवश्यकता होती है शरीर को, सब कुछ मिलता है हमें। और कितना रॉयल है सब कुछ, दुनिया में हम सब गए हैं धर्म स्थानों पर, तीर्थों पर, पहले हम जब बाबा के बच्चे नहीं थे सब जगह गए हैं, वहां कैसे होता है। और बाबा के घर में आप देखोगे हमें टेंट भी दिया जाएगा, उसको भी कैसे लगाया जाए, आम दुनिया में जो टेंट लगा करके रखा जाता है, रहाया जाता है, ऐसा नहीं है। बाबा के घर में टेंट भी बड़े रॉयल तरीके से लगाए जाते हैं, उसमें भी सबको बाकायदा पूरा अच्छी तरह से अपना अटैची बिस्तर लगाने की अच्छी तरह से जगह दी जाती है। सब तरह से बाबा, हम बच्चों को और बाबा के घर में हमारी दीदी दादियां हमारा कितना ध्यान रखती है कि बाबा के घर में आके बच्चों को किसी को किसी प्रकार की कमी, क्योंकि अब शरीर है, शरीर की व्यवस्थाओं के साथ तो हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, तो उसके लिए स्थान इतना चाहिए, स्थान इतना नहीं होते भी जो व्यवस्था दी जाती है बाबा के घर में, आप कहीं भी तीर्थों पर जाके देख लीजिए, किसी भी धर्म समागम में जाके देख लीजिए, किसी भी संत महात्मा के पास जाके देख लीजिए, जिस प्रकार से बाबा के घर में सब कुछ हमें मिलता है और बड़े खुले दिल से मिलता है, इस प्रकार से और कहीं दुनिया में नहीं मिलता है। तो प्रैक्टिकल संगम युग पर हम देख रहे हैं कि इधर दुनिया की तरफ से दुनिया में कितनी समय तनाव चल रहा है, कितनी खेंचातान चल रही है सब बातों की, लेकिन बाबा के घर में हम जितने दिन भी चार पांच दिन छह दिन रहते हैं, हमें सब प्रकार से संतुष्ट किया जाता है। तो ब्राह्मण जीवन के अंदर सबसे पहले हमें स्वयं को स्वयं से संतुष्ट बनना है। हमें स्वयं अपना जो ज्ञान का जीवन मिला है, बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा के परिवार ब्राह्मण परिवार से जुड़े हैं, हम ये देखें कि जब तक हमारे आपके जीवन में संतुष्टता नहीं आएगी, अपने लिए पर्सनल मुझे संतुष्टता चाहिए, जब तक मैं खुद खुद से संतुष्ट नहीं हूं तो मैं अपने साथियों को सहयोगियों को संतुष्ट नहीं रख सकती। आगे विस्तार में बड़ा संगठन है, उनको संतुष्ट कैसे करूंगी? और संतुष्टता के लिए भी मुझ आत्मा को अपने अंदर की प्रसन्नता को नहीं छोड़ना है, क्योंकि संतुष्टता एक ऐसा गुण है जो कि आम भाई बहनों के साथ व्यवहार करने से भी हमें क्या करता है, बहुत एक कड़ी बनने का काम करता है। चाहे हम कितनी बड़ी सेवा कर रहे हों, कितना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हों, उसके लिए हम चाहे एक दूसरे को विचार देते हैं, कार्य देते हैं, धन के लिए भी कहते हैं, सहयोग के लिए तन भी लगाने को कहते हैं और समय लगाने को भी कहते हैं, लेकिन हरि की परिस्थिति समय और हरि की अवस्था और व्यवस्था देख करके अगर हम संतुष्टता को अपनी कायम रखते हैं और जो जितना जिस प्रकार से हमारे पास आता है उसको अगर हम बाबा के घर में बाबा के बच्चों ने जो समय दिया, तन दिया, धन दिया, बाबा के बच्चों ने दिया है, बहुत वैल्यूबल है। जो भाई बहने उसको बहुत वैल्यूबल समझ के और उसको उसी प्रकार से यूज करते हैं, तो मैंने अपने जीवन में देखा है कि थोड़े में भी, जैसे एक शब्द कहते हैं ना, बरकत हो जाती है, बहुत हो जाता है, कभी कमी नहीं पड़ती है, कभी हमें मुख से कहना नहीं पड़ेगा कि कमी आ गई या हमें और चाहिए, और के लिए हम दोबारा बैठ करके किसी से हम मीटिंग करें, व्यवस्था करें, नहीं करना पड़ेगा, अपने आप होगा। लेकिन अंदर ये भाव हो कि जो बाबा के बच्चे हैं, जिसने भी जो दिया, जिसने भी तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, समय लगाया, ये बाबा का रियलिटी और रॉयल्टी को लिए हुए, प्योरिटी को लिए हुए बच्चा है। जितनी इसकी अवस्था थी, स्थिति थी, व्यवस्था थी, जितना इसका मन था, हृदय था, जैसा ये कर सकता था इसने किया। हम जैसे सोच लेते हैं, कई बार थोड़ा सा शक, अनुमान, बहम की बात को ला करके अपनी जो अंदर की रॉयल्टी है, अपनी जो अंदर की रियलिटी है, उसको हम क्या कर लेते हैं, कई बार हम सोच लेते हैं ऐसे, देखो फलाना है वो ऐसा कर सकता था, फलानी है वो ऐसा कर सकती थी, लेकिन नहीं, हर एक का समय, स्थिति और उसके साथ साथ जो प्राप्ति है उसके पास, उसमें कहीं भी किसी समय भी फर्क पड़ सकता है, किसी समय भी ऊंचाई नीचाई हो सकती है, किसी समय भी कम ज्यादा हो सकता है, हम हमेशा एक ही प्रकार से किसी को नहीं बांध सकते। अगर ये भाव हमारे अंदर रियलिटी का एक दूसरे के प्रति रहता है और उसके साथ स्नेह बना रहता है और स्नेह की कड़ी जो है संतुष्टता के साथ जुड़ी रहती है, तो कभी भी आप देखेंगे आपसे कोई असंतुष्ट भी नहीं होगा। जो बाबा कहता है, खुद को भी संतुष्ट रखो, दूसरों को भी संतुष्ट रखो, और जो ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता के सर्टिफिकेट की बात आती है, वो हम तभी ले सकते हैं जब हम पहले दूसरों के प्रति भी संतुष्टता का भाव रखें और अपने प्रति भी। अब इसके लिए हमें अपने व्यवहार के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन लाने की अभी आवश्यकता है, क्योंकि व्यवहार अभी भी हम देख रहे हैं आपस में ब्राह्मण परिवार के अंदर, चाहे हम अपने सेवा केंद्रों पर हैं, चाहे बाबा के घर में आते हैं, अभी भी व्यवहार में हम एक दूसरे के साथ कुछ जो ब्राह्मण जीवन की रॉयलिटी वाला व्यवहार होना चाहिए। जैसे आप देखिए, बोल में देख ले हम, कोई कोई भाई बहन आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से परिचित होते हैं, जानते हैं एक दूसरे को, मिलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे ऐसे पास से निकल जाएंगे। देखा है, ऐसे नहीं देखा है, देखा है, लेकिन देखे हुए अनदेखा कर देंगे। फिर जब दूसरी बार निकलेंगे तो हम चला के कहेंगे ओम शांति, तो फिर वो भी कर देंगे। मानो जैसे चलते चलते सूक्ष्म में कुछ भी कर लिया, कुछ भी हमने पा लिया, कुछ भी हम बन गए थोड़ा सा, तो क्या आ गया, क्या आ गया, सूक्ष्म में रॉयल ईगो, बाहर से चाहे नहीं दिखा रहे हैं लेकिन सूक्ष्म में अंदर है। जबकि हम जब कई समय के बाद बाबा के घर आते हैं, मिलते हैं, या वैसे कोई कहीं से आता है बाहर से, तो क्या हुआ अगर मैं चाहे कोई सेंटर की इंचार्ज हूँ, बड़ी भी हूँ, अगर उसने नहीं ओम शांति की तो मैंने कर दी तो क्या हो गया? माना हमें ये रहता है कि सामने वाला करे। माना अभी तक आप देखेंगे एक ओम शांति इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतने स्वमान का स्वरूप हमारा है, जो अंदर आत्मा को शांति और शक्ति देने वाला शब्द भी हम एक दूसरे को बोलने में क्या कर जाते हैं, संकोच कर जाते हैं। अब वो संकोच किसी भी बात से कर रहे हैं, कोई भी भाव मन में चाहे रख लिया है, या किसी ने भाव आपके मन में मेरे प्रति भर दिया है, ये भी हो सकता है किसी ने भर दिया हो, चाहे पहले आपके नहीं हो, आप किसी ने डाल दिया हो, लेकिन हम जो इतना प्यारा हमारा उच्चारण है, हम इस उच्चारण को उच्चारण करना क्यों छोड़ देते हैं? ये रॉयल्टी हम अपनी कभी नहीं छोड़े। मैं अपने सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी हम किसी के पास से निकलते गुजरते हैं, अगर आपकी नजर से नजर मिल जाए एक दूसरे, नहीं मिली तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नजर से नजर मिल जाए, चाहे अपना हो, चाहे कोई दूसरा भाई बहन हो, किसी दूसरे केंद्र का, कहीं का भी हो, तो ओम शांति जरूर बोलो। इससे क्या होता है, ये ओम शांति आपस में एक दूसरे को कहना, माना हम एक स्नेह के सूत्र की कड़ी एक दूसरे से जोड़ते हैं, उस आत्मा को आएगा कि देखो मैं जानती तो नहीं हूँ या मैं जानता तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ओम शांति किया तो ये अपना ब्राह्मण, माना महसूस हुआ कि अपने ब्राह्मण परिवार का है, इस ब्राह्मण के अंदर ये रॉयल्टी है कि कोई भी ब्राह्मण मिले, जैसे आप देखिए दूसरे जो धर्म मत संप्रदाय के लोग होते हैं, सरदार कोई भी किस सरदार को देख लेगा तो जरूर क्या करेगा, सत श्री अकाल करेगा। कोई दूसरे मत संप्रदाय का होगा, उसको मिलेगा, पहचानता होगा तो जरूर उसको उसके नाम से वो नमस्कार करेगा, नमस्ते करेगा, जो भी शब्द। लेकिन ऐसे ही हम बाबा के बच्चों के अंदर ये एक रॉयल्टी होनी चाहिए कि अगर हमारी आपस में एक दूसरे से नजर मिल जाए तो हम जरूर आपस में एक दूसरे को ओम शांति। आपने देखा ये गुण किसके अंदर है, हम ब्राह्मणों में ये गुण किसके अंदर है, ये गुण हम ब्राह्मणों में किसके अंदर है, जो विदेश के भाई बहने हैं ना, आपने नोट किया, मैंने तो बहुत बार नोट किया है, जो विदेश के भाई बहन है, अगर कोई भाई बहन की नजर से नजर मिल जाए हमारे से, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, वो ओम शांति जरूर बोलते हैं। ये मैंने बहुत नोट किया है विदेश के भाई बहने, लेकिन अपने देश अपने जो भाई बहने हैं, कई बार अपने जो मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो भी आप देखेंगे नजर चुला लेंगे, इधर उधर कर देंगे, ओम शांति नहीं बोलेंगे। मतलब एक छोटी छोटी बातों में हमारी रॉयल्टी आती है, छोटी छोटी बातों में और बोल में। बोल देखिए, ये बोल जिनको अनमोल कहा गया है, ये बोली गोली का भी काम करती है और ये बोली टोली का भी काम करती है। माना टोली माना मिठाई, मीठा। अब यही बोल बाबा ने हमारे टोली बनाए अर्थात मीठे बनाए, लेकिन अभी तक हम बाबा के बच्चों को आपस में बोल में व्यवहार में हमारी क्या रॉयल्टी होनी चाहिए कि हम जो भी बोलें, जितना भी बोलें, जैसा भी बोलें, उसमें रियलिटी जरूर होनी चाहिए। रॉयल्टी लाना चाहते हैं ना ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी, तो ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है सर्वगुण, तो सर्वगुण संपन्न आत्मा वही बनेगी जिसके बोल के व्यवहार में भी क्या हो, जो भी बोलें, जो भी कहें, जितना भी कहें, जैसा भी कहें, उसमें रियलिटी होनी चाहिए। कर सकते हैं सभी हम, ये करना होगा अगर हम बाबा को अपने द्वारा प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, या बाबा जो चाहता है कि मेरे बच्चे अभी चलन और चेहरे से सेवा करें, तो हमें अपनी वाणी के अंदर भी ये रियलिटी लानी है, ये प्योरिटी लानी है। कई बार हम कहते हैं दूसरे की सेफ्टी के लिए भी हम, या दूसरे की सुरक्षा के लिए, या कोई ऐसी बात थी जिसके लिए कि हमें थोड़ा सा झूठ बोलना या थोड़ा मिक्स करना जरूरी हो गया था, चलो अगर आपने कर भी दिया, लेकिन समय पड़ने पर आपको वो सच्चाई बतानी जरूर चाहिए। मानो एक बार कोई परिस्थिति ऐसी क्रिएट हो गई कि थोड़ा सा आप अगर युक्ति से मतलब एकदम पूरा पूरा सच बोलेंगे तो उस समय वातावरण बिगड़ सकता है, बात बिगड़ सकती है, सामने वाले की कोई स्थिति खराब हो सकती है, तो आपने थोड़ा बात को घुमा करके थोड़ा युक्ति से बोला। लेकिन युक्ति भी समय अनुसार वो मुक्ति देने वाली होनी चाहिए। ऐसे नहीं युक्ति से बोल के भी अगर वो बात बिगड़ रही हो तो हमें सच ही कहना चाहिए, युक्ति से भी कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भी हम कहें बोलें, जितना भी बोलें कहें करें, उसमें रियलिटी जरूर हो। तो जब हमारी वृत्ति में भी रियलिटी होगी, प्योरिटी होगी, बोल में भी रियलिटी और प्योरिटी होगी, तो कर्म कैसे होंगे? कर्म ऑटोमेटिक मेरी आत्मा के रियलिटी वाले ही होंगे, प्योरिटी वाले ही होंगे और रॉयल्टी दिखाई देगी उसके अंदर, और मेरा हर कर्म यादगार बने। बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ कर्मों की कलम दी है हाथ में, लेकिन लिखना किसको है, उन कर्मों को करना किसको है? मुझ आत्मा को। तो मुझे अपने ऊपर नजर रखनी है, मुझे अपने आप को देखना है कि मुझे सब देख रहे हैं, तो मेरा कर्म सबके सामने कैसा हो? कहीं भी जाएं, किसी के साथ, मैं तो ये चाहती हूं कि हम सब भाई बहनें, अभी बाबा के बच्चे ये पुरुषार्थ करें कि हम कहीं यात्रा पर भी जा रहे हों, बस में बैठे हों, ट्रेन में बैठे हों, कोई अज्ञानी लोग, बाहर के लोग हमारे पास बैठे हों, उनके पास हम बैठे हुए जो बात करें, व्यवहार करें, वहां पर हम उनके सामने ही, आप देखिए हम कोई भोजन भी खाते हैं, कुछ लेते भी हैं, जो भी एक्टिविटी हम करें वो ऐसी हो कि उन लोगों को हमारी हर एक्टिविटी देखने से क्या आना चाहिए, मन में क्या मन में आना चाहिए कि ये बहुत रॉयल्टी वाले लोग हैं, बहुत प्योरिटी वाले लोग हैं, बहुत रियलिटी वाले लोग हैं। माना ये अटेंशन रखना है अभी हमें, खाने के समय भी, बात करने के समय भी, और कई बार व्यवहार करने की बात सबसे ज्यादा आती है। आप देखेंगे जब हम ट्रेन में बैठते हैं, सामान लेके चढ़ते हैं, लोग पहले बैठे हुए होते हैं, हमारी सीट पर भी बैठे होते हैं, सीट के नीचे जो जगह है वहां उन्होंने सामान भी रखा हुआ होता है, हमें भी रखना होता है, लेकिन आप देखेंगे कोई कोई भाई बहन तो बहुत अच्छी तरह से आराम से खड़े होते हैं, उनको कहते हैं थोड़ा हम भी रखें, आप थोड़ा एडजस्ट करते हैं, देखते हैं, जगह बनाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करके आराम से बात करेंगे, आराम से खड़े होकर, थोड़ी देर खड़े रह के भी उनको कहेंगे कि भाई ये हमारा इतना नंबर सीट है, ऐसे आराम से बात करके। और कोई कोई देखते हैं, क्योंकि एक साथ ही आ रहे हैं, आप देखेंगे कि ट्रेन के अंदर बहुत सारे भाई बहनों का एक ट्रेन में ही आने का सफर होता है, और कोई कोई क्या कर रहे होते हैं, हर बात में रॉयल्टी, हर बात में रियलिटी, और उसमें भी व्यवहार में सबसे पहले, क्योंकि अभी आते हुए हमारे साथ ऐसा हुआ है, आबू के ही कोई चढ़ी हुई थी और बहने थी, और पता नहीं वो घर से ही कुछ गुस्से में आई हुई थी, जैसे नहीं कोई पहले से किसी के मन में गुस्सा होता है, नाराजगी होती है, ऐसे बहुत गुस्से में थी, दो तीन तो उसके साथ ठीक थी, लेकिन एक बहुत गुस्से में थी, बहुत नाराजगी में थी। माना हमने कुछ कहा नहीं, बोला नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ सीट की बात हो रही है कि हाँ दूसरा कोई उतरा है और उसने सीट ले ली, आगे उसकी सीट की बुकिंग हो गई, आबू में उसने उतरना था, पता नहीं किस बात से उसको चिढ़ थी, लेकिन इतना गुस्सा, इतना, लेकिन हम लोग बिल्कुल शांत रहे, कुछ नहीं उसको कहा, वो कुछ भी बोलती कि कहते कि हमने कुछ, किसी ने नहीं कहा, सिर्फ एक बहन ने बोला, जैसे एक बहन ने थोड़ा सा बोला तो वो इतना बोलने लगी, तो मैंने कहा, मैंने बाद में जब वो चली गई अपनी सीट पर, सेट हो गई, बाई चांस टीटी आया उसको वहां से ले गया, कहता मैडम इधर आ जाओ आप, इधर जगह है, इधर सीट खाली है, तो बाई चांस वो चली गई वहां से, लेकिन जाने के बाद मैंने जरूर कहा कि देख बहन इतना समय हम शांत रहे, अगर आप अभी चुप रह जाते तो क्या होता? अपना रिकॉर्ड अच्छा रहता ना, लेकिन एक थोड़ा सा आपने बोल करके क्या कर दिया उसको, और उछाल, वो तो उछल ही रही थी पहले से ही, पहले ही उसके मन में गुस्सा था, कुछ पहले ही मन में उसकी नाराजगी थी। माना हमें ये ध्यान रखना है कि अभी बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए अपने इस ईश्वरीय ज्ञान को, ईश्वर का ज्ञान, भगवानो वच, हम बच्चों ने अगर जीवन में लिया है, उतारा है, तो वो कुछ ना कुछ हमें दूसरों को व्यवहार के द्वारा अनुभव होना चाहिए, सुनान कर नहीं। और आप देखेंगे अभी लोग तो सुनने को भी तैयार नहीं है, प्रैक्टिकल चाहते हैं। क्यों? समय, वातावरण पर, इस समय जो संसार का ऐसा बन चुका है कि जितने भी बड़े बड़े महान लोग हैं उनकी कोई ना कोई बात बन रही है, कोई ना कोई बात बन रही है, इतनी लोगों की उनके प्रति श्रद्धा और भावना होती है। अब वही नजर, लोगों की वही नजर हमारे प्रति भी है, अब उनकी नजर का नजरिया हमें बदलना है। अगर वो हमारे अंदर कोई ऐसी त्रुटि, ऐसी कमी, ऐसी बात नोट करते हैं, या कोई भाई बहन के द्वारा ऐसी कोई एक्टिविटी हो जाती है, तो कहाँ है ब्राह्मण जीवन की रूहानी रॉयल्टी? टाइटल तो बाबा ने हमें दे दिया है और हम सब ने ले लिया है और हम रिपीट करते हैं, मुख से वर्णन करते हैं, लेकिन मैं आत्मा अपने आप से पूछूं कि मेरे अंदर वो रूहानी रॉयल्टी है? आप देखो, पहले के जो महान लोग थे उनके पास कोई भी कुछ पूछने जाता था तो वो हमेशा व्यवहारिक बात करते थे, व्यवहार से ही कुछ ऐसा करके दिखाते थे जिससे सामने प्रत्यक्ष कर देते थे कि इसमें कौन ज्ञानवान, कौन गुणवान और कौन गुणहीन है। आपने ऐसी बहुत सी बातें सुनी होंगी, मैं फिर सुना करके आपके दिल दिमाग के अंदर ये चित्र बना रही हूँ, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा दिल जो है चित्रों की भाषा या कोई कहानी की बात होती है उसको अच्छी तरह से समझ लेता है, उसको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेता है। आप देखेंगे पहले के जो राजा महाराजा होते थे, वो जब भी कोई राज तिलक अपने बच्चे को देना होता था, राज्य की जिम्मेवारी किसी को संभालनी होती थी, तो क्या करते थे, जो भी उनका अपना गुरु होता है या पता करते थे कौन महान संत है, उसके पास जाकर के उससे उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा दिला करके उसको योग्य बनाते थे, और फिर उनसे पूछते थे कि आप बताइए इन मेरे दो बच्चों में से, तीन बच्चों में से कौन योग्य है। तो वो क्या करते थे, प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाते थे, सामने सामने व्यवहार, प्रैक्टिकल इन बच्चों का क्या है, जिससे वो अपने आप ही पता चलता था कि कौन सा बच्चा राज्य कारोबार को, सारी जिम्मेवारी को संभालने के योग्य है। वही बात यहाँ ब्राह्मणों पर आती है। जैसे बताते हैं कि एक राजा ने दोनों बच्चे अपने शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के पास भेज दिए। जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी होने को आ रही है, उधर राजा को भी किसी को राजकुमार बनाना है, तो वो गुरु को संदेश लिख के भेजता है कि राजा आपको ये संदेश भेज रहा है, गुरु महाराज मैं इन बच्चों में से किसको योग्य समझूं और किसको मैं सारी जिम्मेवारी दूं। तो गुरु ने क्या किया, मैसेज के रूप में संदेश भेजा कि तुम दो गठरी, बहुत बड़ी बोरी के रूप में भूसा भेजो। राजा को कहा भूसा भेजो, किसने, गुरु ने, और भूसे की दो बोरियां वहां पहुंचा दी। और गुरु ने क्या किया, वो दोनों बोरियां एक राजकुमार के कमरे में, दोनों राजकुमार रहते थे, दोनों का अलग अलग कमरा था, राजा के बच्चे थे, बड़े ठाट से रहते थे, वहां भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी उनकी, लेकिन थी साधारण, जैसे गुरु के आश्रम में रहा जाता है, लेकिन अलग अलग रहते थे। तो दोनों के कमरे खोलकर, वो तो अपनी शिक्षा के लिए गुरु के सामने बैठे हैं और गुरु ने पहले ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे कुछ सामान आएगा और उसको ऐसे रख देना है, तो दोनों के कमरे के अंदर क्या किया, वो बोरियां रख दी, किसकी, भूसे की भरी हुई। और जब उनकी शिक्षा का पीरियड पूरा हुआ, पढ़ाई पूरी करके और अपना भोजन करके कमरे में आए, तो कमरा खोला तो देखा वो भूसे की बोरी है। दूसरा राजकुमार कमरे में जाता है, वो भी कमरा खोलता है, देखता है तो भूसे की बोरी रखी हुई है। तो अब एक राजकुमार ने जैसे ही वो भूसे की बोरी को ऐसे खोला, देखा तो उसमें भूसा एकदम बाहर निकला एकदम, और क्या हुआ, जब बिखरा तो एकदम गंदगी हो गई, उसको इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, उसने कहा ये किसने ये काम किया, यहाँ किसने रखी है, और गुस्से से जो है तेजी से गुरु के पास जाता है नाराज होके। तो जैसे नाराज होके जाता है तो गुरु ने कहा तुम्हारे पिता ने भेजी है, जैसे ये कहा ना पिता ने भेजी है, तो वो और गुस्से में आके क्या करता है, गुरु जी कहता है मेरे पिता का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि राजा का बच्चा उसके पास ऐसी चीज कहां से आने वाली थी। तो बहुत नाराज होता है और गुस्से में आता है। इतने में क्या होता है कि दूसरा भाई भी उसका आ जाता है, लेकिन वो बड़े प्यार से आराम से शांति से आ रहा है। वो भी गुरु से पूछने आता है कैसे से मेरे कमरे में एक भूसे की बोरी रखी हुई है। उसने बड़े आराम से खोली, देखा भूसा है, और उसको वापिस बड़े आराम से बंद कर दिया, माना बोरी का मुंह बंद कर दिया, और बंद करके और बैठ के थोड़ी देर कमरे में सोचने लगा कि ये भूसे की बोरी क्यों आई है, कहां से आई है। अच्छा, हो सकता है कि ये भूसे की बोरी किसी ने, उसको ये तो पता नहीं मेरे पिता ने भेजी है, किसी ने भेजी होगी अपने इस गुरुकुल में, बहुत बड़ी गौशाला है, तो गौशाला के अंदर गौओं को चारा खिलाना होगा, हो सकता है यहाँ पर चारा रखते हैं, वहां जगह नहीं होगी, जगह कम होगी, इसलिए हमारे कमरे में जगह थी, इसलिए हमारे कमरे में इस बोरी को रख दिया है। तो मैं गुरुजी को जाके बताता हूँ कि ऐसे ऐसे भूसा आया है, इसको गौशाला में पहुंचाया जाए, या नहीं पहुंचाने की जगह हो तो मेरे कमरे में पड़ा है, मैं अकेला इसको उठा नहीं सकता हूँ, तो इसको उठा करके एक साइड में मैं कमरे में रख सकता हूँ, ऐसे माना ये विचार करता हुआ वो गुरु के पास पहुंचा। अब दोनों बालकों के, आप देखो दोनों ही राजा के बेटे हैं, दोनों ही गुरु के पास गुरुकुल में क्या ले रहे हैं, शिक्षा और दीक्षा ले रहे हैं, एक समान शिक्षा और दीक्षा मिल रही है, लेकिन दोनों के संस्कार उनके व्यवहार के द्वारा दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कैसे गुरु ने उसको शांत किया, जो गुस्से में आया हुआ था राजा का बेटा, शांत किया और उसके कमरे से सारी सफाई करवाई, सारा सब कुछ किया, और उसको तो कहा तुम जाओ, और उसको अपने पास बुलाया दूसरे भाई को, उसने सारी बात कही जैसे उसने सोचा था, वैसे का वैसा सारा विचार गुरु के सामने उसने प्रकट किया। तो गुरु ने तुरंत क्या किया, राजा के पास मैसेज पहुंचाया कि तुम्हारा बड़ा बेटा जो है वही राज्य कारोबार को चलाने के योग्य है, छोटा बेटा अभी तक उश्रृंखलता वाला है, क्रोध आवेश वाला है, अभी इसको और आवश्यकता है, इसके व्यवहार का पता चल गया, अब मैं जो इसको उसी प्रकार से हैंडल करूंगा, उसी तरह से शिक्षा और दीक्षा लूंगा, लेकिन अभी परीक्षा लेने से पता चला कि इसका व्यवहारिक और संस्कारिक जो विचार भाव है वो कैसे बने। तो बाबा भी हम सब बच्चों को क्या कहता है, तुम मेरे राजा बच्चे हो, तुम राजाओं के राजा बनने वाले हो, और हमारे योग का नाम भी क्या है, सहज राज योग, राजाओं का राजा बनाने वाला योग। तो हम बाबा के राजा बच्चे, राजाओं के राजा भविष्य में बनने वाले बच्चे, हम भी अपने आप को देखें कि अभी तक हमारी आपकी मनोस्थिति है ऐसी कि कितनी भी कोई नकारात्मक बात हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, वातावरण हो, लेकिन उसमें से मैं क्या लूं, उसमें से क्या निकालूं। देखो उस राजा के बच्चे ने उस भूसे के बारे में कितना सकारात्मक सोचा, कितना अच्छा सोचा, और कमरे के अंदर रख दिया, उसको बुरा नहीं लगा, उसके लिए भी उसने क्या सोचा कि शायद वहां गौशाला में यहां भूसा रखा जाता है, वहां स्थान कम होगा, रखने की जगह नहीं होगी, इसलिए मेरे कमरे में जगह थी, यहां रख दिया। उसने किसी प्रकार से भी उस बात को क्या किया, नकारात्मक रूप में नहीं लिया, नेगेटिव नहीं सोचा, बुरा नहीं सोचा, व्यर्थ नहीं सोचा। क्या हम बाबा के बच्चे ऐसा कर सकते हैं, करते हैं, ये मुझे मेरे से पूछना है। जब तक ये अंदर से हमारे वृत्तियों के अंदर, भावों के अंदर, विचारों के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक हम बाबा के बच्चे अपनी रूहानी रॉयल्टी नहीं दिखा सकते, इसलिए रियलिटी को भी लाना है और प्योरिटी को भी लाना है, दोनों को संपूर्णता में लाना है अपने अंदर। जितनी ये संपूर्णता में हमारे अंदर आती जाएंगी, उतनी अपने अंदर से ज्ञान गुण और शक्तियां दूसरों को अनुभूति में आना शुरू हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी शांति पूर्वक आप बैठे रहे। मैंने तो सोचा था शायद बनारसी भाई की क्लास होगी तो सभी उठ जाएंगे क्योंकि बहुत देर से बैठे होते हैं, वैसे इतना लंबा सुनना भी उसके लिए भी बड़ा धीरज चाहिए, तो आप सबने धीरज बनाए रखा। ये धीरज सदा साथ रखना, धीरज का फल भी बहुत मीठा होता है, तो धीरज भी हमारा एक बहुत बड़ा गुण है, ये भी हमारी रोहनी रॉयल्टी में आता है। ओम शांति।